10:10 हुए तो मेरे फोन का अलार्म शुरू हो गया मुझे याद दिलाने के लिए कि दुआ का वक्त हो चुका है। और जब मैंने 10:10 का अलार्म लगाया तो उसके लिए जो मैं आए थे याद रखता हूँ वो क्या कौन सी है, यूहन्ना 10:10 उसकी रखता है कि चोर नहीं आता चुराने मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और तो मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा कि जिनके घर में फोन है आप जरूर अपने घरों में जो फोन है उन पर अलार्म लगाएं, उन पर अलार्म लगाएं। जैसे मैंने एक अलार्म लगाया हुआ है 7:07 पर, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खुला जाएगा। तो इससे दो फायदे हैं, यहां पर किसी का फोन है वो फोन बंद कर दें, दो फायदे होंगे। एक तो आयत बाइबल मुकद्दस की याद होगी और दूसरी बात दुआ के लिए याद दहानी। तो मैंने अपने फोन में तकरीबन 4-5 अलार्म लगाए हुए हैं, 7:07 पर, 10:10 पर, 1:16 पर, रोमियो 1:16 के मुताबिक कि मैं अंजील की खुशखबरी से शर्माता नहीं हूं। फिर एक अलार्म मैंने लगाया है 3:20 पर और 3:20 पर, इफिसियों 3:3 उसकी 20वीं आयत की कि जो हमारी हाथ और हमारे ख्याल और हमारी सोच से बढ़कर बहुत कुछ कर सकता है। और फिर 3:33 पर एक अलार्म मैंने लगाया हुआ है यर्मिया 33:3 उसकी 3 आयत, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और तुझ पर बड़ी बड़ी गहरी बातें जाहिर करूंगा जिन्हें तू नहीं जानता। सो आज हम सब खुदा के जुड़ चुके और चंद नामों के लिए खुदा से कहेंगे कि खुदा मुझसे कलाम कर, और अगर किसी का फोन ऑन है तो उसे साइलेंट पर लगा ले वरना बंद कर दे, क्योंकि फिर सारा पैगाम उसकी तवज्जो बच जाए। खुदावंद खुदा आज की सुबह तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुमकिन किया कि एक बार फिर तेरे लोगों के साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर तेरी प्रस्तुति कर सकूं। खुदावंद आज का कलाम हम सब के लिए बाय से बरकत हो, आज का कलाम हम सब की खुदावंद खुदा रहनुमाई का वसीला ठहरे, आज एक एक जिंदगी की जरूरत के मुताबिक खुदावंद को बोल, मुझे अपने सलीब के साए के पीछे छुपा ले ताकि यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तू नजर आए, ताकि लोग मुझे नहीं बल्कि तुझे खुदावंद खुदा सुने, क्योंकि मेरी हैसियत ही क्या है कि किसी को कोई बात हिकमत की बता सकूं, क्योंकि हिकमत का मंबा तू है, शिफा जारी तू करता है, मौजदात का खुदा तू है, और जब तू कलाम करता है तो खुदावंद खुदा जिंदगियां तब्दील होती हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक खुदावंद खुदा तेरे पाक रूह का मस्ता कसरत से ठहरे। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूं। तकरीबन 4-5 दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था और ऑस्ट्रेलिया में जब मैं खिदमत के लिए गया तो मैंने जिस खानदान के रहने का मेरा इंतजाम किया गया, खानदान बड़ा सादा बड़ा गरीब था, लेकिन उनमें जो बात मुझे सीखने को मिली कि वो अपनी मसीही जिंदगी में इतने मालदार थे कि वो क्या है जी, उन्होंने मुझे माला माल कर दिया। उनके घर में जगह तो थोड़ी थी लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था, उनके किचन में खाने के लिए तो मुख्तसर चीजें थी लेकिन वो रूहानी रोटी से भरपूर थे, नहाने के लिए रहने के लिए जगह तो बड़ी तंग थी कि मैंने 5 दिन में सिर्फ तकरीबन 2 दफा नहा पाया, लेकिन उनकी रूह खुदा के कलाम से धुली हुई थी। ان کے بچوں سے جو مجھے سیکھنے کو ملا وہ کیا تھا کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اس پادری کے تین بیٹے بیٹیاں تھے جس میں اس کے دو بیٹے اور ایک بیٹی, دونوں خاوند اور بیوی کام کرتے ہیں اور بچے کیا ہے اسکول جاتے ہیں. لیکن جو بات سیکھنے کو ملی وہ کیا کہ اس کے گھر کا جو انتظام یا نظام تھا وہ کیا تھا, جیسے ہم اپنے بچوں کو کرسمس پر تحفے کے لیے پیسے دیتے ہیں انہوں نے گھر میں کیا اصول بنایا ہوا ہے کہ ہر کرسمس پر وہ اپنے بچوں کو کیا دیتے ہیں تھوڑا سا روپیہ پیسہ, یعنی کہ $100 انہوں نے زیادہ کیا ہوا ہے جس کی انہوں نے ان کو شاپنگ کروانی ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو اس بچے نے جو اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ جی آپ کا یہ $100 ہے جس میں آپ نے آنے والے کرسمس میں کیا کرنی ہے, شاپنگ کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ شاپنگ کے لیے جائیں وہاں پر ایک مشنری آیا انڈیا سے اور اس نے کلام سنایا اور اس نے کہا کہ انڈیا میں میں جاتا ہوں, اس کے بعد ایک اور جنگل میں جاتا ہوں, وہاں پر بائبل مقدس کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے گھروں میں چار پانچ بائبلیں ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بائبل نہیں ہے, تو آپ دعا کریں اگر آپ کچھ ہدیہ اجاز اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس ضرورت کے لیے تو ضرور کریں. تو انہوں نے کیا کیا, چرچ میں اناؤنس کیا کہ ہدیے کی ضرورت ہے فلاں جگہ پر, بائبل مقدس کی ضرورت ہے, جو لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے یا بہت سے میلوں کا سفر کر کے ان کو جانا پڑے گا. تو لمبی کہانی مختصر, جب باپ کے چرچ میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی اس نے اناؤنسمنٹ کی تو کیا ہوا کیا ہوا, اس کے بیٹے نے کیا کیا جی, اس کے بیٹے نے کہا کہ باپ میں اپنے پاکٹ منی میں سے کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کتنا, اس نے کہا کہ جی میرا جو $100 ہے اس میں سے 50 میں دینا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے لیے جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے. لیکن بچے کے دل کی ایک خواہش تھی, وہ ایک گیم خریدنا چاہتا تھا جو $100 کی آتی تھی. تو جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ $50 اس مشنری کو ان کی ضرورت کے لیے جو بائبل مقدس خریدنی ہے دے دوں گا, تو جب وہ بازار میں گئے تو بازار میں جا کر جب شو روم میں اس شیشے کے گلاس میں دیکھا کہ وہ گیم جس کے لیے اس نے ایک سال انتظار کیا ہے کہ کرسمس کا تحفہ وہ میرا ہوگا وہ ٹھیک $100 کی تھی. تو پھر نے باپ سے کہا, انجانے ہی میں وہ گیم خریدنا چاہتا ہوں. اس کے باپ نے کہا لیکن تجھے یاد نہیں کہ تُو نے اپنے آدھے پیسے بائبل مقدس کے لیے جن کے پاس نہیں دے دی. اس نے کہا ہاں ہاں ہاں, اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں, چلو گھر چلے. مایوس کا ہو کر لیکن دل میں خوشی رکھتے ہوئے بچہ وہ واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا دل نہیں بدلوں گا, جو میں نے خدا کے لیے ٹھہرایا ہے لوگوں کی ضرورت کے لیے میں ان کو دوں گا, اور اس میں $50 میں میں خوش رہوں گا. اور یہ بچہ کتنے سال کا ہے, 3.5 سال کا. میں 15 سال 16 سال 17 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہا, 3.5 سال کا بچہ ہے یہ. اس نے دل میں ٹھہرا لیا کہ جو مجھے میں نے ٹھہرایا ہے وہ میں کروں گا. تو خدا ہمارے دلوں پر نگاہ کرتا ہے. اور آخر میں کیا ہوا, باپ نے $50 دیے اور خدمت کے لیے اس مشنری کو دے دیے کہ آپ جتنی بائبلیں سے خرید سکتے ہیں خرید لیں. اس نے ان کو دے دی, اس کے پاس $50 بچے. کچھ دن بعد اس کا باپ کا نام دانیل ہے اور بیٹے کا نام میکس. میکس کا باپ دانیل بازار جاتا ہے اسی جگہ پر جہاں پر اشتہار لگا ہوا تھا $100 کا, اور جب دوبارہ جاتا ہے وہی گیم $59 99 सेंट की सेल पर लग गई और उसने उसके जो बेटे के 50 रुपए थे उससे खरीदे, उसे फिर एक पैसा उसने से बच गया। वो घर लाकर अपने बेटे को गेंद देता है, उसका बेटा कहता मैंने तो अपने पैसे मिशन के लिए दे दिए थे बाप, मुझे जरूरत नहीं। उसने कहा तुम हैरान होगे कि खुदा ने क्या किया, जो चीज $100 की थी आज वो सेल पर थी, वो जितने पैसे तेरे थे तुझे एक पैसा और बच गया है तेरे $50 में से, और उसको गेन भी मिल गई और खुदा का काम भी हो गया। ये कहानी मैंने क्यों आपके साथ शेयर की, जब हम जिस बात को ठहरा लेते हैं खुदा के लिए करते हैं तो खुदा उसमें बरकत डालता है। मैं चाहता हूं कि आज के इस पैगाम में हनन्याह और सपीरा का वाक्य आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपने कुछ खुदा के लिए ठहराया है, वो सिर्फ हदिया नहीं, वो सिर्फ हमारा वक्त ही नहीं, वो सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं, कुछ और भी हो सकता है, उससे मिलो जान करें। मेरे साथ एक हवाला निकालें, इमाल की किताब उसका पांचवा बाब, इमाल की किताब उसका पांचवा बाब, इस वाक्य को पढ़कर आप इसका तल्लुक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कर सकते हैं कि मैं कितना वक्त खुदा को दूंगी दूंगा, मैं कितना अपना रुपया पैसा खुदा को दूंगी दूंगा, या कितना वक्त अपने बेटे और बेटियों के साथ गुजारूंगी ताकि वो ऐसा खुदा का बेटा ऐसी बेटी बने कि इस जमीन पर जब लोग उसे देखें उससे मसीह की क्या आएगी, खुशबू आएगी। और इस मैक्स ने क्या किया, ये कहानी उसके बाप दानियल ने मुझे सुनाई और उसने मुझे हला कर रख दिया। और जब मैं वहां से ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में आने की तैयारी कर रहा हूं, उसका दादा जो कि मेरा उस्ताद है पादरी जी, उसके पास कुछ धान जिसे हम उर्दू में कहेंगे पंजाबी में पान थी, क्योंकि पैसे यानी चमानियां तेरियां रुपया दो सिक्के थे, उसने अपनी जोब में हाथ डाला पादरी जी ने और निकाल कर मैक्स को दिए और मैक्स ने पकड़ते ही देखकर कहा इसे मैं अपने उस हदिये के गले में डालूंगा जो अब क्या जाएगा, पापा लुगनी के जंगल में जाएगा जहां लोगों के पास पानी नहीं ताकि वो क्या लगा सके, पानी का ट्यूबवेल लगा सके। उसका दादा मिस्त्री है, 40 साल से 60 मुल्कों में खिदमत कर चुका है, उसने उस मैथ को देखा कि मैंने उसे छोटा सा हदिया, थोड़ी सी धान दी, थोड़े से पैसे दिए और उसने लिए और सबसे पहले मैथ की सोच किया थी ये हदिया मैं दूंगा उनके लिए जिनके पास पानी नहीं है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है, हमें खुद ये करने की जरूरत है। तो मैं उसकी सारी बात को देख रहा था, 5 दिन मैं उनके साथ रहा, 7 दिन उनके साथ रहा, उनका उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ जब देखा तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा होने की जरूरत है, मुझे इन जैसा करने की जरूरत है, मुझे ऐसा बाप बनने की जरूरत है, मुझे ऐसा चरवाहा बनने की जरूरत है, मुझे ऐसा मसीही बनने की जरूरत है, मुझ में ये कमी है इसे दुरुस्त करने की जरूरत है, मुझे और दिलो जान खुदा की खिदमत करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आप सबके साथ आज हनन्याह और सपीरा का वाक्य पेश करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ये 11 आयात, इसका अतलाक हम बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगी में करेंगे। इमाल रसूलों के इमाल उसका 5 बाब, उसकी 1 आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सपीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया, मगर पत्रस ने कहा ऐ हनन्याह क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े, क्या जब वो तेरे पास थी तेरी ना थी और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही, तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला, ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और तकरीबन 3 घंटे गुजरने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को अजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर को दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सबब से सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। आज एक बड़ी ही खूबसूरत सुबह में, आज एक बड़े ही अजीब ऑसम जिसे कह सकते हैं संडा में, संडे की इबादत में आपके साथ में एक बड़ी ही अफसोसनाक कहानी पढ़ रहा हूं कि क्या हुआ। कामों तो बीवी मान गए, उन्होंने क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने हत्या रखा। लेकिन इसमें से जो बात सबक सीखने का है, ये रोजों के एयाम है। अगर आप रोजा रखें तो उस रोजे में जो भी आपने वक्त ठहराया है, कुछ 5 घंटे का रोजा रखते हैं, कुछ 12 घंटे का रोजा रखते हैं, कुछ 24 घंटे का रखते हैं, कुछ 2 दिन का रखते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में बयान करती है कि जिसने जिस कदर खुदा के हजूर वक्त ठहराया है वो उस कदर उसके साथ निभाए। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि जब कोई तू किसी मन्नत को माने तो उसके पूरा करने में देर ना कर। सो रोजा की हालत में अगर आपने कोई रोजे के लिए मन्नत या अपना कोई मकसद खुदा के दूर रखा है, आपने रोजा 24 घंटे रखा है या 48 घंटे का रखा है या फिर 15 घंटे का रखा है, ये आपके और खुदा के दरमियान है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, उससे वो वक्त पूरा दे। पहली बात। दूसरी बात, हम जो कुछ करेंगे हमारे बेटे बेटियां वो ही करेंगे। खासकर हम जो शादीशुदा हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम जो कुछ करेंगे हमारी औलाद वो ही करेगी। इसलिए हमें बड़ी ही सोच समझदारी के साथ क्या करना है, खुदा की परस्तिश अकीदत इबादत करनी है। वो वहां पर बैठने कोई मसला नहीं है। आप सबको आवाज आ रही है? सो हनन्याह और सफीरा की कहानी में से हम क्या सीखते हैं? ओ बड़ा अफसोस हुआ, खामद और बीवी मर गए और उन्होंने जायदाद बेची और ये हुआ वो हुआ। इसमें जो सीखने की बात है, जो काम करें जी से करें, ये जानकर करें किसके लिए करते हैं, आदमियों के लिए नहीं, किसके लिए? खुदावंद के लिए। तो आज के सवाल, आप इसका तलाक रोजे से कर सकते हैं कि मैं रोजा क्या रखूंगी, बेईमानी वाला रोजा नहीं रखूंगा, रखूंगी। इसका तलाक कि मैं खुदा की अगर खिदमत करूंगी तो मैं उसे 25% नहीं बल्कि 100% अपना वक्त दूंगी। अगर आप रोजादार हैं तो रोजादार होते हुए आप अपनी जिंदगी में वक्त मुकर्रर कर लें कि मैंने दिन में 10 दफा खुदा के हुजूर, 5 दफा, 1 दफा क्या करना है, वक्त गुजारना है। तो आज मुझे नहीं पता आपका कौन सा बोझ है, कौन सी मुसीबत आपकी जिंदगी में है गुजर रही है, किस तरह का तूफान आपको सामना है, लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, खुदावंद खुदा हमारा हमदर्द है। हमारा हमदर्द है, वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए हमारा दिफा करता है, वो हमारे लिए शिफायत करता है। इसलिए एक और हवाला मेरे साथ देखिए, रोमियो 8:1 उसकी 31वीं आयत। रोमियो 8:1 उसकी 31वीं आयत में पौलुस रसूल हम सबको याद दिलाता है कि हम इस बात से ना वाकिफ ना रहें,
اور وہ بات کیا ہے؟ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ کون سی باتیں؟ ہو سکتا ہے کہ آج آپ دکھ میں سے گزر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز بہت زیادہ بیمار ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کا جاننے والا یا کوئی عزیز رشتہ دار قید خانہ میں ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے نافرمانی میں ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ خود شہر کے اس چوراہے جیسے کہہ سکتے ہیں مبارک چوک پہ اسے بہت سے راستے لگتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں روحانی طور پر چوک میں کھڑے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کدھر جاؤں, کون سا درست راستہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بیٹی اور بیٹا ہوں جو چاہتے ہیں کہ میں بھی صبح کی عبادت میں شامل ہونے کی دیر ہو گئی ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس نے بھی آنا شروع کر دیا. میں آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں, یسوع آپ کو بلاتا ہے, یسوع آپ کی چاہت کرتا ہے, یسوع آپ سے رفاقت کرنا چاہتا ہے, یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہم شکل ہو جائیں تاکہ لوگ اس کے رنگ میں رنگ جائیں. جیسے ہم بہت دفعہ جو بیٹیاں ہیں خاص کر دوپٹہ رنگوانے کے لیے جاتی ہیں تو اس کا رنگ اگر زبردست ہو پکا ہو تو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ فلاں رنگنے والا بھائی اس کی دکان پر جانا, وہ پیسے بھی ٹھیک لے گا اور رنگ کا کام بھی ٹھیک کرے گا. اور ہم اس کی کیا کرتے ہیں, ایڈورٹائز مشہوری کرتے ہیں. ہمیں بھی یسوع کے رنگ میں رنگ جانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ ان کا بدلنے والا کون ہے, ان کا اطمینان کون ہے, ان کی زندگی کو تبدیل کرنے والا کون ہے. اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں, اپنے دکھوں کی بابت کیا کہیں, بچے نافرمان ہیں کیا کہیں, گھر میں اطمینان نہیں کیا کہیں, گھر میں بیماری ہے کیا کہیں, کیا ہم نے کیا ہے, کیوں یہ سب ہو رہا ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے, جس نے اپنے بیٹے کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا, اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. کیا آپ ہر روز خدا کے در پر جا کر کہتے ہیں میں صرف نجات ہی سے مطمئن نہیں, مجھے اپنے آسمان کے اس بار خانہ سے اور برکتیں دے. یا پھر ہم خدا جب ہم سے گفتگو کرتا ہے تو ہم کانپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, وہ ہم سے رفاقت کرنا چاہتا ہے اور ہم آنکھیں چراتے ہیں. آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. میری طرف دیکھیں, جو بیٹیاں بائبل نہیں پڑھ سکتی وہ میری طرف دیکھیں. ہمیں سننے والے بننا ہے. اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے, کس کا یقین ہے کہ خدا ہماری طرف ہے؟ پکی بات ہے خدا ہماری طرف ہے, تو پھر کیوں ہم ڈرے ہوئے لوگوں کی طرح سے کچھ بات کرتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ ہم ایسے لوگ ہوں کہ اتوار کو چرچ میں آ کر کہیں آسمانی باپ اور سارا ہفتہ یتیموں کی طرح زندگی بسر کریں. اگر ہم اسے آتوار کو اے ہمارے باپ کہتے ہیں تو سارا ہفتہ بھی اسے اے ہمارے باپ کہہ کر کہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, ہماری زندگیوں میں تیرا زور ظاہر ہو, تیری بادشاہی اس سے پہلے کہ دنیا میں ظاہر ہو, تیری بادشاہی کا راز میری زندگی میں ظاہر ہو, اور میرے دل کے تخت پر یسوع تو بادشاہ ہو, اس سے پہلے کہ میں دنیا کے کسی اور بادشاہ کو اور اپنی منمانی اور خواہشوں کو سچا دوں. آج بہت دفعہ ہم, میں بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب مشکل پریشانی میں گھرے ہوتے ہیں تو ہم बहुत दफा खुदा पर शक करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा था, मुझे पुलिस ने घेरा हुआ था। वो इसलिए, वो पूछना चाहते थे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, और ये उनका कानून है कि आप क्या अपने साथ लेकर आए हैं, कोई बीमारी तो लेकर नहीं आ गए, आप किसी और मुल्क में तो नहीं गए, कोई गोश्त, कोई गंदम या कोई नया पौधा यहाँ पर लेकर तो नहीं आ गए, क्योंकि मुझसे जाने से पहले पिछले साल किसी ने वहां पर क्या किया, कोई फल लेकर चला गया, सेबों का फल, फल लेकर चोरी से चला गया ऑस्ट्रेलिया में, और उस फल को जो उस इलाके का नहीं था उसके पास एक जरासीम फैल गया, और तकरीबन 600 से ज्यादा लोग क्या हो गए, उस बीमारी का शिकार हो गए, जिसे आज तक वो क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो मुझे सारी तफ्तीश कर रहे हैं। जब मैं ये सारी बातें सुन रहा था तो घबराया हुआ, लेकिन मुझे याद क्या था, खुदावंद मेरे साथ है। तो मैं चाहता हूं कि हम ना सिर्फ एतवार को बल्कि हर रोज आसमानी बाप के साथ गुफ्तगू करें, और रिश्ता कायम ऐसा हो कि हम अपने आप को यकीनी महसूस ना करें। बहुत दफा हम अपने आप को रूहानी यकीन समझते हैं, एतवार को तो हमें खुशी, इत्मीनान और तसल्ली मिलती है, और बाकी छह दिन हम अपना मुंह, अपनी तवज्जो, अपना रवैया ऐसा बनाए रखते हैं कि जैसा हमारा बाप ही नहीं। तो पालूस रसूल कहता है, जिसने अपने बेटे को दरेग ना किया वो हमको सब चीजें क्यों ना बख्शेगा, और आगे लिखा है, खुदा के बर्दीदों पर कौन नालिश करेगा, कौन आप पर उंगली उठाएगा। एक है, उसका नाम अबलीस है, वो आप पर और मुझ पर उंगली उठाता है। वो कहता है कि इसकी जिंदगी को देखो, ये क्या है, कूड़ा क्रिकेट है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसे कोई हक नहीं कि तुझसे बरकत हासिल हो। और यीशु जी कहता है, खामोश हो ऐ शैतान, मैंने उस बेटी के लिए अपना क्या दिया है, खून दिया है, मैंने उस बेटे के लिए जिसे कोई पहचान नहीं थी अपनी पहचान दी है। खुदा हम सब की हमायत के लिए खड़ा होता है। यह आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूं कि हम खुदावंद के खुदा के हाथ पर तवक्कल करें, और जब ऐसा करेंगे तो उससे कहें कि जैसे तूने मूसा के लिए बहरे कुलदम में से, दरियाए नीम में से रास्ता बनाया, मेरे आसमानी बाप मेरे लिए रास्ता बना। जैसे तूने खुदावंद खुदा दाऊद को जोर बख्शा, मुझे जोर बख्शता कि मेरी जिंदगी में जो जाति जूलियट है उसका शिकार कर सको। तो हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट है, उस रुकावट को कहीं यीशु के नाम में रास्ता बन जाए। हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई जाति जूलियट है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, जो हमें डराता है, और बहुत से 40 दिन 40 रात तक जैसे फलस्तीनियों का वो लड़ाका सूरमा इसराइलियों को डराता रहा, कोई आगे नहीं आया सवाए दौर के, हम भी अपने सामने खड़े हुए जाति जूलियट को कहें कि मैं खुदावन इसराइल के खुदा के नाम से जो लश्करों का खुदा है आता हूं, और वो आज ही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और आगे क्या लिखा है, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा, मसीह वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा, और खुदावन और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और हमारी शिफायत करता है। आपकी और मेरी शिफायत कौन करता है, वकालत कौन करता है, यीशु मसीह। अगर दुनिया में कोई हमें छोड़ जाए, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है, बहुत दफा हम उसे छोड़ते हैं। एक बंदे ने कहा कि भाई आपकी जिंदगी कैसी जा रही है, उसने कहा कि मेरी जिंदगी में ऐसे है जैसे खुदा बहुत दूर है। उसने कहा कि गलती किसकी है, खुदा दूर नहीं हुआ, तुम दूर हुए हो। हमारी शिफायत यीशु मसीह करता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। क्या बता सकते हैं कि कौन उनको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? क्या मुसीबत, क्या शैतान, क्या जुल्म, क्या तंगी, क्या अकाल, क्या नंगापन, का खतरा, का तलवार, क्या कोई हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? नहीं। हम उससे मोहब्बत करें या ना करें, वो हमसे मोहब्बत करता है। जैसे आप में से बहुत सी ऐसी बहने हैं, आपका खामद उसने जुबे में अपना सारी तनख्वाह लिखवा दी, उसने शराब में अपनी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, उसने ब्याज उठा उठाकर आपकी आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन आपकी मोहब्बत तब्दील नहीं हुई, क्योंकि आपको वो वादा याद है जो आपने पादरी के सामने, किसी बिशप के सामने, किसी फादर के सामने, किसी खुदा के बंदे के सामने किया होगा, आंखों में आंखें डालकर, कि मैं दुख में, सुख में, मुसीबत में, बदहाली में, बीमारी में, जैसे भी हो, मैं तुझसे जुदा नहीं हूंगा और ना होंगी। और खुदा का वो कौल आपको याद होगा कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान जुदा ना करे। उस कौल के मुताबिक आप अपने खावन से मोहब्बत करती हैं बावजूद उसकी सारी गलतियों के। वैसे ही खावन अपनी बीवी से बावजूद कमियों कमजोरियों से खाना नहीं बनाने आता, उसे ये नहीं करने आता, उसे वो नहीं करने आता। खामद अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत को लेकर जरा एक पैमाने में देखें कि खुदा की मोहब्बत करोड़ों अरबों पैमाने, मीटर और बीलों से ज्यादा है। कौन उसकी मोहब्बत से हमें जुदा करेगा? कोई भी नहीं। शैतान हमें जुदा नहीं कर सकता, मुसीबत हमें जुदा नहीं कर सकती। इसलिए जब हमारे सामने कोई बात आए तो हम हर चीज ना कहें कि मैं इस वजह से चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे किसी ने दुखी किया है। अगर मसीह की मोहब्बत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती तो फिर क्यों हम उससे जुदा होते हैं? तो पालूल रसूल कहता है 38वीं आयत में, हम सब मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि मुझको यकीन है। आप में से किस किस को यकीन है जो पढ़ने वाले हैं? सबको यकीन है कि क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे ना हमको मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। ये खुदा का वादा है। क्या हमें यकीन है? कौन कौन यकीन करता है कि खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर सकता कोई भी? तो इस मोहब्बत में कायम रहे। अब जब घर जाएं यहां से तो इस मोहब्बत को दूसरों तक लेकर जाएं। बताएं कि मैं गुनाहगार थी, गुनाहगार था, उसने मेरे गुनाहों को माफ किया। ये है मसीह की मोहब्बत। मैं कमजोर थी, लाचार थी, बताएं उसने मुझे जोर बख्शा। ये है मसीह की मोहब्बत। सुबह की इबादत में आप सबकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप आए और मसीह को देखें, सीखें और समझें और उस पर अमल करें। हम सुबह की कहानी में सीख रहे थे फरीसी और उस बदचलन औरत की कहानी, कि उस बदचलन औरत को यीशु जी ने क्या कहा कि इसके जो बहुत से गुनाह थे वो माफ हुए, इसलिए इसने बहुत ज्यादा मोहब्बत की। हम भी अपनी जिंदगी में इजहार करें कि हमारे गुनाह उसने माफ किए हैं, हम उसकी मोहब्बत दूसरों तक ले जाए। तो आज आपके लिए जाने से पहले चैलेंज क्या है? मुझे यकीन है कि खुदा की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर आप अभी तक शक में हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए दावत है, आप अपनी जगह पर खड़ी हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में जो मोहब्बत खो गई है उसे दोबारा तुम बहाल कर। खुदावंद मैंने तुझसे अपनी पहले की मोहब्बत छोड़ दी थी, आज इस पैगाम के वसीला से मेरी दिल में वो मोहब्बत का दिया दोबारा फिर चला है। और खुदावंद खुदा कहेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे जैसे भी तुम हो, और वो गीत किस सूरत में बन जाता है, उसका कलाम, बरसों मैंने चाहा तुझको छुपके छुपके प्यार किया, आखिर अपनी मोहब्बत का यूं सूली पर इजहार किया। खुदा की मोहब्बत आए खुदा के सुन चुके। अगर आज आप ना अमीर हैं, अगर आज आप परेशान हैं, अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है, अगर बीमारी ने आपको चकना चूर कर दिया है, अगर कोई और परेशानी है, तो खुदा बाप के सबके सामने आकर उसका दरवाजा खटखटाना शुरू करें और कहें कि मैं जो तेरे नाम से कहलाती हूँ, इस जमीन पर तेरी बंदी, खुदावंद खुदा तू मेरा आसमानी बाप है, मेरे दिल की मुराद को सुन, मेरी दुआ को सुन, उस बाप को पुकारना शुरू करें जो कभी भी हमसे दस बरसात और दूर नहीं होता, कभी भी हमें यकीन नहीं छोड़ता, उसे पुकारना शुरू करें। सब हम खुदावंद से दुआ करना शुरू करेंगे। खुदावंद खुदा तेरे हजूर आता हूँ, खुदावंद जैसे खुदावंद खुदा अलीशा के पास वो बेवा आकर कहती है कि अलीशा खुदा के नबी तेरे कामद तेरे कादम की बीवी मैं और मेरे बेटे जो के कर्जे में हैं, तू खुदावंद खुदा के हजूर दुआ कर लश्करों के रब, हम भी सब तेरे हजूर आते हैं। खासकर खुदावंद आज जो बीमारी में है, वो बीमारी के जुए यीशु मसीह नासरी के नाम में टूटे। अगर कोई गुनाहगार है और उसने अभी तक तौबा नहीं की, तो तू उनको कहता है कि खुदावंद यीशु पर ईमान लाओ और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ, ताकि तुम दोजख की आग में ना जाओ बल्कि खुदा के फरदौस में हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी बसर करो, क्योंकि तुमने खुदावंद कहा है कि मुझको और हम सबको कौन तेरी मोहब्बत से जुदा करेगा। खुदावंद खुदा बंद रहम यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, खुदावंद खुदा काले जर कान की बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो, खुदावंद खुदा जो मेरे पर सोज है वो सोज यीशु मसीह के नाम में खुदावंद खुदा ठीक हो जाए, खुदावंद खुदा जो जोड़ों का दर्द है वो जोड़ों का दर्द यीशु के नाम में दूर हो, खुदावंद खुदा जो बेटे जो बेटियां खुदावंद खुदा शराब की वजह से बीमार हैं, उनकी खुदावंद खुदा जिंदगियों को बहाल कर, याद करके खुदावंद खुदा जिगर पर तेरे बदले यीशु मसीह का जख्मी हाथ चाहते हैं, उस जिगर को नया बना दे खुदावंद खुदा, उसकी अंदरियों को दोबारा खुदावंद खुदा नया कर दे। अगर कोई दिल का मरीज है तो उसके दिल के मर्ज को तू ठीक कर, अगर किसी के सर में पानी है तो वो पानी सूख जाए और जिंदगी बहाल हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, रसौलियां गायब हो जाए। खुदावंद खुदा जो बेटियां बेटे प्रेगनेंट है, खुदावंद बेटियां प्रेगनेंट है और खुदावंद खुदा उनके खानदों के लिए खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि वो ऐसे शानदार बाप बने माँ बने जो खुदावंद खुदा आने वाली जिंदगी के लिए पाए से बरकत हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद आज का कलाम हम सबको याद दिलाए कि कोई भी हमको तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, सब कुछ बड़ी बरकत यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ। आमीन।